आरवी भागकर अंदर चली आई थी। अयांश भी तेजी से चलता आरवी के पीछे अंदर चला आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो आरवी पकड़ में आ जाए तो अभी उसे सबक सिखा दे। पर जैसे ही आरवी अंदर पहुंची, राधे जोर से बोली। राधे के साथ साथ हॉल में बैठे दिनकर जी ने भी आरवी की ओर फट से देखा। तभी आरवी हंसते हुए दिनकर जी के पास चली आई और सोफे पर बैठ उनसे लिपटते हुए बोली, आज ना हम बहुत खुश, बहुत खुश। अगर कहूँ ना, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशियों में से ये एक खुशी है तो है, कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आज सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खिलखिलाकर हंसते हुए। आरवी को इतना खुश, हंसते, मुस्कुराते और खासकर बोलते देख दिनकर जी और राधे भी उसके साथ हंसने लगे। दोनों ने फट से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि दोनों को आरवी का चुप रहना पसंद नहीं आया था, और अब उसे इतना बोलते देख दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। तभी अयांश अंदर आया। वो गुस्से में था, पर दिनकर जी को खुश देख उसके कदम रुक गए और गुस्सा उसे भी याद ना रहा। वो वहीं पैंट में दोनों हाथ डाल हॉल के बीच ही खड़ा हो गया। तभी दिनकर जी आरवी से मुस्कुराते हुए बोले, देखो तो कितनी अच्छी लगती हो, ऐसे ही रहा करो हंसते मुस्कुराते। राधे भी बोल पड़ा, हाँ आप चुप रहती नहीं, बोलती ही अच्छी लगती हैं। कुछ वक्त से आप जैसे गुमसुम थीं तो अजीब सा लग रहा था। आपका शोर करना मतलब आपका बोलना ही सही है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में रौनक आ गई है ना मालिक। दिनकर जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ सच में इसकी उदासी, खामोशी, मानो ये है ही नहीं घर में। अब देखो लग रहा है ना जैसे है ये यहाँ। सही बोल रहा राधे, बोलती ही अच्छी लगती हो, चुप तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हमें। आरवी हंसते हुए दोनों की ओर देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम चुप नहीं रहेंगी। बकबक इतनी पसंद हमारी तो हम करेंगे, फिर चाहे किसी का सिर दर्द हो तो मुझसे न कहना, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सामने खड़े अयांश की ओर थोड़ा सा देख कर, और फिर दिनकर जी की ओर देखते हुए, अच्छा आप बड़े हो ना, आज हम खुश हैं बहुत, तो सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। आप हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं ना, आशीर्वाद दीजिए ना अपना। दादी माँ से सुना था, बड़े अगर सिर पर हाथ रख दें बच्चों के तो उनकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगती है। हम भी नहीं चाहते हमारी इस खुशी को कोई नज़र लग जाए, रख दीजिए ना। ये सुनकर और आरवी को उम्मीद भरी निगाहों से अपनी ओर देखता पाकर दिनकर जी ने उसी वक्त आरवी के सिर पर हाथ रख दिया। तभी आरवी मुस्कुराई और सोफे से उठते हुए बोली, राधे भैया खाने में क्या है, बहुत भूख लगी है, अपने पेट पर हाथ रखते हुए। और सुना है ना, खुश होते हैं तब और भी ज़्यादा भूख लगती है। सबका तो पता नहीं, मुझे तो लगती है खुशी में भी और टेंशन में भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब रुकने जाने वाली नहीं। खैर छोड़िए, आज तो सेब भी 56 भूख से कम ना लगेगा। कहते हुए आरवी डाइनिंग टेबल की ओर आई और सेब उठा लिया। तभी राधे उसकी ओर आते हुए बोला, अरे हम खाना लगा रहे हैं, आप ये क्यों खा रही हैं। दिनकर जी, हाँ बेटा खाना खा लेना, अभी लगा देगा खाना राधे, रात के खाने का भी वक्त हो गया है, इतनी जोर से भूख लगी है, ये फल खाकर क्यों भूख खराब कर रही हो। आरवी एप्पल खाते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है, एक पल भी नहीं रुका जाएगा, हम आज इसी से काम चला लेंगी, और कुछ नहीं चाहिए, कोई खाना भी नहीं। राधे आप एक मिनट दीजिए। आरवी एप्पल खाते हुए राधे की ओर आते हुए बोली, एक मिनट, एक पल भी नहीं बोला ना अभी, बस काफी ये फल, बहुत थक गई राधे भैया, बस ये खाकर हमें सोना है, बहुत नींद आ रही है, अंगड़ाई लेते हुए, तो हम चले आराम करने, बाय। इतना कह आरवी वहां से जाने लगी। तभी अयांश की ओर रुककर देखा, जो बड़े ही अजीब तरह से उसे देख रहा था, या कहें बिल्कुल शांत खड़ा होकर। अब आरवी को कैसे रास आता, इतना परेशान किया था आरवी ने उसे आज, सोचा थोड़ा और बोल ही देते हैं, परेशान ना भी हुए तो क्या, इरिटेट तो हो ही जाएंगे, सोचते हुए। तभी आरवी को एक खुराफात सूझी और वो अयांश को देख राधे की ओर मुड़ते हुए बोली, राधे भैया आज के बाद आप मुझे आप नहीं कहेंगे। राधे हैरानी से, मतलब? आरवी मुस्कुराते हुए, मतलब मैं कौन हूँ? अरे मैं मिस्टर मेहरा की वाइफ, इनकी पत्नी, अयांश की ओर इशारा करते हुए, उनकी यानी कि दादाजी दिनकर जी की ओर इशारा करते हुए, की पोत बहू यानी कि उनके पोते में जिस लड़की से शादी की है वो मैं हूँ, खुद की ओर इशारा करते हुए, मिस्टर मेहरा की मिसेज मेहरा। तो मुझे आज के बाद आप नहीं बोलेंगे, या तो नाम से बुलाओ, नाम से नहीं नहीं, सोचते हुए, हाँ इनको आप क्या बोलते हो, एप्पल का बाइट लेते हुए। राधे अयांश की ओर देखकर धीरे से बोला, अयांश बाबा, आरवी, यस ये अयांश बाबा, तो मैं आरवी भाभी, तो आप क्या कहेंगे आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे आप मैम ये सब पसंद नहीं, तो जल्दी बोलिए क्या बोलेंगे, बौहे उचकाते हुए। आरवी की ये बातें सच में अयांश को इरिटेट कर गईं, पहले पत्नी वाला ड्रामा और अब एक नया, और उसकी बौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। वो आरवी को वहीं खड़ा घूर रहा था, क्योंकि उस वक्त दिनकर जी के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट अयांश नहीं चाहता था कि उसके गुस्सा करने की वजह से फीकी पड़ जाए या गायब हो जाए। भले ही आरवी की वजह से वो खुश थे, पर अयांश अपने दादू को उदास देखना कभी नहीं चाहता है, इसीलिए उसने ये सोच खुद को उस वक्त रोक लिया कि बाद में निपटूंगा इसे अच्छे से, आज कुछ ज्यादा ही बन रही है। वेट आरवी, राधे अयांश के डर से थोड़ा डरा हुआ था, पर आरवी के दो बार कहने पर बोल पड़ा, आरवी भाभी दैट्स गुड राधे भैया, यही कहना, ओके बाय, और वहां से हंसते मुस्कुराते हुए जाने लगी। तभी दिनकर जी के पास रुकते हुए बोली, सॉरी राधा जी, आपको परेशान किया चुप रहकर, पर अब नहीं करेंगे। राधे भैया दादाजी को खाना खिलाइए अच्छे से और दवा भी टाइम से दे देना, और आप बहुत अच्छे हो, खुश रहा कीजिए, क्योंकि खुश रहना बेस्ट मेडिसिन होती है हेल्थ के लिए, उन कड़वी दवाइयों से भी अच्छी, मुंह बनाकर हंसते हुए। ओके बाय, गुड नाइट दादाजी, गुड नाइट राधे भैया और गुड नाइट पतिदेव जी। इतना बोल आरवी हंसते हुए वहां से खुशी से झूमते हुए चली गई। आरवी का ये तीन चार बार दादाजी कहना दिनकर जी को खुशी के साथ साथ हैरानी में भी डाल गया। पहली बार आज आरवी ने उनको दादाजी बुलाया था, तभी उन्होंने और राधे ने हैरानी से अयांश की ओर देखा, क्योंकि आज जो आरवी ने किया वो पहले कभी नहीं किया था, और अयांश भी चुप खड़ा था आरवी के इतना सब बोलने पर भी। तभी अयांश बोल पड़ा, कुछ ज्यादा ही खुश है आज, पागल गई है, डोंट वरी, कल तक ठीक हो जाएगी। इतना बोल अयांश वहां से ऊपर चला गया। राधे मालिक कहता हुआ दिनकर जी के पास चला आया और दोनों ऊपर की ओर देखते हुए हंस पड़े। आरवी नहाकर बाथरूम से बाहर आई और खिड़की के पास आ खड़ी हो गई और आसमान की ओर देख बोली,
ये जो जिंदगी में अंधेरे के बादल छाए हुए हैं ना, जल्द हट जाएंगे। दादी माँ कहती है ना, आरवी हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। जैसे ये काली रात कल सुबह तक हट जाएगी और सुनहरा दिन निकल आएगा, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी तो सुबह होगी ना, क्योंकि उम्मीद मुझे खुद से है, किसी और से नहीं। खुद टूट जाएंगे पर अपनी उम्मीद को नहीं टूटने दूंगी आरवी चतुर्वेदी, और मैं टूट जाऊं ये तो होने से रहा, किसी और को ना टूटने दूंगी, खुद को, और मुझे तो खुद से बड़ा प्यार है, तो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी उम्मीद कभी नहीं टूट सकती, अब तो सब ठीक होकर रहेगा, करना ही होगा आरवी, क्योंकि बात सिर्फ मेरी लाइफ की नहीं रही, कई जिंदगियों का सवाल है, खासकर खुशियों का, और उनको तो ये खुशियां मिलनी चाहिए ना जिन पर उनका हक है। मुझे अपने लिए ही नहीं, अभी और वर्तिका के प्यार के लिए लड़ना होगा, उनके सच्चे प्यार को जिताना है, उन दोनों को साथ लाना ही है, फिर चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगी। मिस्टर मेहरा आप भी नहीं रोक पाएंगे इस बार तो मुझे, क्योंकि मैं सब कुछ आपके सामने करूंगी, फिर देखना आप क्या से क्या कहता है। बेशक आप कहते कम करते ज्यादा हैं, पर जो कहूँ वो करके रहती हूँ। वर्तिका तुम्हें जल्द ठीक होना होगा, प्यार में तो जिया जाता है, मरा नहीं जाता, और तुमने तो ऐसे शख्स से प्यार किया जो आज भी तुम्हारे लिए जी रहा। यकीनन जब तुम ठीक हो जाओगी तो वो प्यार अभी को दोगी, जिसका वो हकदार, जिसके आज भी इंतजार है, तुम दोनों का साथ होकर रहेगा। जो अपने प्यार के लिए जीना तक छोड़ दे उसके प्यार भी नहीं कह सकते। बस तुम ठीक हो जाओ ताकि सब ठीक हो जाए। मैं तो सोच रही हूँ जब तुम और अभी मिलोगे और उसे पता चलेगा तुम्हारे जिंदा होने का, कितना खुश होगा ना, उसे भी बताऊंगी जल्द मैं, मुस्कुराते हुए। तुम्हारा हर हाल में साथ चाहिए मुझे वर्तिका, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अपने भाई विनित जी के लिए, अपने प्यार अभी के लिए, पहले जैसी वर्तिका बनना होगा तुम्हें। मैं डरती नहीं हूँ मिस्टर मेहरा से, पर जो करने वाली हूँ आसान नहीं है, करने भी देंगे या नहीं पता नहीं, पर करना होगा। आप साथ दोगे ना बप्पा, हाथ जोड़ते हुए, कट्टी हूँ, नाराज थोड़ी आपसे, बस आप साथ देना, बाकी सब संभाल लूंगे। वैसे आज मिस्टर मेहरा की हालत देखने लायक थी ना बप्पा, 12 नहीं मैंने उनके चेहरे पर 2 बजा दिए, हंसते हुए। थोड़ा ज्यादा परेशान किया ना मैंने उनको, पर वो भी तो करते हैं ना, उनके साथ टिट फॉर टेट बनता है। ये नहीं कि मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आई एम वेरी इनोसेंट स्वीट, और वो डेविल आरवी चतुर्वेदी यूनिक है, उनके जैसी कभी नहीं बन सकती। माना कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसके जैसा नहीं बनना चाहिए, वरना हम में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा। पर बप्पा उनको उनकी ही भाषा समझ आती है, और ज़रूरी था, बस थोड़ा सा किया मैंने, जो किया उनके जितना तो मैं कभी कर ही नहीं सकती बुरा, सॉरी। हाँ पर सच में जो प्लान मैंने बनाया है उसके लिए भी ये सब ज़रूरी है, क्योंकि मुझे परेशान करने के लिए बेशक वो मेरे पास आते हैं, पर मैंने खुद से दूर रखने के लिए उनको परेशान किया है आज, क्योंकि वो पास ना आए तभी मैं अपने प्लान को सक्सेस कर पाऊंगी। उनका मुझसे दूर रहना ज़रूरी है, तभी पॉसिबल है, वरना वो अक्कड़चन टांग तोड़ आएंगे ना, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए आरवी चतुर्वेदी आपको मिस्टर मेहरा आपको इतना इरिटेट करेगी कि आप दूर भागोगे मुझसे, और यही मुझे चाहिए। तभी हंसकर ताली बजाते हुए, वैसे मज़ा आ गया आज तो उनकी बैंड बजाकर, कुछ समझ नहीं आ रहा था इतनी टेंशन में, दिमाग में उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए खुद को उनसे उलझा लिया। चलो माइंड फ्रेश हो गया, मज़े भी ले लिए खूब, माइंड को रिलैक्स करना था, सब चीज़ों से ध्यान हटाकर कुछ हटके करना था, तो मिस्टर मेहरा को पकड़ लिया हंसते हुए। वैसे खतरे से भिड़ना आसान नहीं था, पर मुश्किल भी नहीं। आज वो भी बड़े कंट्रोल में थे, वो खुद जाने क्यों, सच में खुश होकर। जो किया उससे ऐसे लग रहा है सिर का भारीपन निकल गया, मन का जो कुछ कर लिया। अब शांत मन से अच्छे से सोच समझकर कल अपना काम करूंगी। चल आरवी, आज तो नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। एक डेविल को मार के छक्के जो छुड़ा दिए। मैं इतना बोली कि उनकी बोलती बंद। वाह रे मेरे पति देव, सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए, हंसते हुए। आज के लिए इतना काफी था, बाकी कल बताते हैं, कहते हुए आरवी बेड पर आ बैठी और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। क्रमशः